श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पत्रस की दूसरी पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है पवित्रता, सत्य ज्ञान और पुनरागमन। हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हुए, किन्तु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
हमको है यकीन हम जाएंगे वहीं जहां यीशु रहता है। हमको है यकीन जाएंगे वही जहाँ यीशु रहता है, जहाँ यीशु रहता है। कोई उलझन होगी न कोई दुख होगा न कोई दुश्मनी भरपूर शांति रहेगी। न कोई भूख होगी न कोई प्यास होगी न कोई उलझन होगी न कोई दुख होगा न कोई दुश्मनी भरपूर शांति रहेगी। हमको है यकीन जाएंगे वही जहाँ यीशु रहता है।
प्रिय मित्र, प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से दूसरे पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि पत्रस कहता है कि परमेश्वर झूठे उपदेशकों एवं भविष्यद् वक्ताओं को कभी नहीं छोड़ेगा। उसने विद्रोही स्वर्गदूतों को भी दंड दिया। उसने प्राचीन युग के संसार को अर्थात नूह के युग के अभक्तों को भी जल प्रलय से नष्ट किया और सदोम तथा अमोरा के वासियों को जलाकर भस्म कर दिया। उसने नूह के परिवार को जल प्रलय में बचाया, लूत को सदोम से बचाकर निकाला। अतः परमेश्वर भक्तों को बचा लेना और अधर्मियों का न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना जानता है। इन बातों को हमने पिछले अध्ययन में देखा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन फिर से एक साथ कर सकें। आज जब हम आपके वचन में से सुनना और सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के आत्मिक आंखों को, उनके कानों को, हृदय और विचारों को खोल दें, ताकि वे आपके वचन को सुनने पाए, आपकी महानता को देखने पाए और अपने जीवन में आपको ग्रहण करने पाए। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो आज पहली बार सुन रहे हैं, आप उनके जीवन में भी अपनी आशीष दीजिए। जो इस समय बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं, किसी प्रकार की तनाव और दबाव में हैं, आप उनकी भी सुधि लें, उनकी भी सहायता करें, ताकि आज का वचन उनके जीवन के लिए लाभ का कारण बने। पिताजी, आज के अध्ययन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए दूसरा पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ें। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। जी हाँ, वे जो यह मानते हैं कि कलीसिया महाक्लेश में होगी, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने भक्तों का उद्धार करना जानता है। आप नहीं जान सकते कैसे, परंतु वह जानता है कैसे। अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी वह जानता है। परमेश्वर भक्तों और अभक्तों में अंतर करना भी जानता है। आज गेहूं और जंगली बीज साथ साथ उग रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि उन्हें उगने दो, मुझे जंगली बीजों की चिंता नहीं है, परंतु वे अधिक ना हो इसकी मुझे चिंता है। आज परमेश्वर का वचन प्रसारित हो रहा है। एक दिन वह अपने भक्तों को संसार से उठा लेगा। उस दिन अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तब अभक्त परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के समक्ष न्याय के लिए उपस्थित होंगे और न्याय का सामना उनको करना होगा। हम दूसरे पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 10 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। यहां पर ध्यान दीजिए, लिखा है विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं। यह कठोर वचन है। इसका अर्थ है अशुद्धता था। यह उन मनुष्यों का चित्रण है जो पशुओं से भी अधिक गिरे हुए हैं, अश्लीलता का आनंद लेने वाले लोग। यहां पर आगे हम पढ़ते हैं, प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। टीकाकारों का मानना है कि यह सांसारिक प्रशासन के संबंध में है, परंतु मेरा मानना यह है कि यह प्रभुता ही है। यहूदा की पत्री 8 में भी इस शब्द को प्रभुता के रूप में अनुवाद किया गया है और इफिसियों की पत्री 1 में इसे प्रभुता ही अनुवाद किया गया है। इसका अर्थ है कि वे परमेश्वर द्वारा स्थापित आत्मिक प्रभुता का इनकार करते हैं। वे परमेश्वर से कहते हैं कि सूर्य के नीचे हर बात को वह तुच्छ जाने। वे किसी भी बात से प्रसन्न नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर की महानता को वे नहीं देख पा रहे थे। मेरे प्रियो, यही नहीं, पत्रस कहता है कि वे ढीठ हैं, वे दुस्साहसी हैं, वे निंदा करने से डरते नहीं। ऐसी भाषा काम में लेकर वे अपने आप को बड़ा समझते हैं। तब वह आगे यह भी कहता है कि वे हठी हैं, अर्थात वे अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं। ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते, अर्थात वे पवित्र बातों को, पावन बातों को बुरा कहते हैं। मनुष्य क्या परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेता है? मेरे प्रियो, अपने अधिकारी या जिससे वह घृणा करें, क्या उसका नाम हम गंदा नहीं करते हैं? वे परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं। परमेश्वर के जगत में जो अधिकार स्थापित किए गए हैं, वे उन्हें बुरा कहते हैं। मेरे प्रियो, यही जीवन है जिसे हम आज देख रहे हैं। दूसरा पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 11 पद में आगे लिखा हुआ है, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि झूठे शिक्षक घमंड से भरे होते हैं। वे ऐसा काम करते हैं जिसे करने का साहस स्वर्गदूतों में भी नहीं होता है। यहूदा के पत्री में यहूदा इसका विशेष उदाहरण देता है। मिकाएल प्रधान स्वर्गदूत ने शैतान को बुरा नहीं कहा था जब वह मूसा के पार्थिव शरीर को लेने गया। शैतान नहीं चाहता था कि मूसा प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय प्रतिज्ञा के देश में प्रकट हो। मूसा को परमेश्वर ने दफन किया था। यहूदा 9 में भी मिकाएल के बारे में कहा गया है, जहां मिकाएल केवल इतना ही कहता है, परमेश्वर तुझे झिड़के। हम में ऐसी ही दीनता होना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के हाथों में सब कुछ छोड़ देना चाहिए। मैं कभी कभी लोगों को सुनता हूं कि वे शैतान को कोसते हैं, तब मैं सोचता हूं कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने भी शैतान को नहीं कोसा था। अतः अकिंचन मनुष्य को कितना सावधान रहना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के द्वारा दंड के भागी न बने। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के ही तुल्य हैं। ये धर्म भ्रष्ट लोग जंगली जानवरों के समान है। कहा जाता है कि मनुष्य पशुओं से विकसित हुआ है, परंतु पुराना नियम और नया नियम बाइबल हमें दोनों से यह पता चलता है कि मनुष्य जानवरों से भी गिरा हुआ जीवन जी रहा है। वह पशुओं से ही नहीं आया, वह पशुओं का सा ही है। पत्रस आगे चलकर इसका उदाहरण हमें देगा। यहां पर हम देखें, लिखा है, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, अर्थात वे पशुओं के समान आशा रहित और असहाय हो गए हैं। उनका कोई उद्देश्य और लक्ष्य नहीं रहा। आगे हम पढ़ते हैं, जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। मेरे प्रियो, पत्रस की यह बात झूठे शिक्षकों के साथ अनेक अन्यों के लिए भी है। मेरे मन परिवर्तन के समय से एक बात जो मुझे अचंभित करती है वह यह है कि अविश्वासी कैसे चतुर हैं, जबकि वे परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखते हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। लंदन के एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ ने सुसमाचार प्रचार सुनकर कहा कि प्रचारक एक अच्छा वक्ता है, परंतु वह क्या कह रहा था उसकी समझ में नहीं आया। मैंने एक बड़ी कलीसिया के बारे में पढ़ा कि वहां वर्षों से विश्वास द्वारा उद्धार पाने का प्रचार किया जा रहा था। वहां सर्वेक्षण किया गया तो ज्ञात हुआ कि उस कलीसिया के 40% सदस्य कर्मों द्वारा उधार पाने में विश्वास करते थे। यह कैसी त्रासदी है कि मनुष्य सुसमाचार को समझ नहीं पाता है, चाहे वर्षों सुसमाचार सुनता क्यों न रहे। यहां पर पत्रस कहता है वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। पत्रस आगे कहेगा कि परमेश्वर की संतान संसार की सड़ाहट से बच जाएंगे, परंतु संसार के प्रदूषण से नहीं बचेंगे। कुछ लोग संसार के प्रदूषण से बच जाएंगे, दूसरे शब्दों में अनेक पापी कहते हैं मैं इससे घृणित मनुष्य के समान काम नहीं करता हूं, और वह नहीं करता है, वह प्रदूषण से बच गया परंतु सड़ाहट से नहीं बचा है। वह हर तरह से धर्म निभाता है परंतु उसका मन परमेश्वर से दूर है, उसका मन भ्रष्ट है और उसने अपने मन का कुछ नहीं किया है। दूसरा पत्रस 2:13 में हम पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा, उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है, ये कलंक और दोष हैं। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। मेरे प्रियो, 13-14 में हम धर्म भ्रष्ट के मन की पूर्ण सराहट को देखते हैं, अर्थात लोगों के मन के अंदर में सराहट भरी हुई है। गलत सोचने वाला गलत काम करेगा, इसमें दो राय नहीं है। लोग कहते हैं मैं अपना जीवन जैसा चाहूंगा वैसा ही जीऊंगा, तुम्हें क्या। बड़े बड़े लोगों का अन्य स्त्रियों के साथ गलत संबंध है, वे पीते हैं, शराब के नशे में घूमते हैं, कुछ तो बहुत अधिक शराब पीते हैं। वे कहते हैं मेरा निजी जीवन है, ये मेरा मामला है, आपसे क्या लेना देना। मेरे मित्रों, जिसका जीवन जनता से संबंधित हो वह निजी जीवन का दावा नहीं कर सकता, अन्यथा उसे अलग हो जाना चाहिए, समाज में रहने की आवश्यकता उसे नहीं है। यदि वह कहता है कि यह मेरा निजी जीवन है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इसलिए पत्रस हमें आगे कहता है 2:14 में उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वे संताप की संतान हैं। झूठे शिक्षकों के लिए ये अत्यधिक कठोर वचन है, वे घोर अपराध के दोषी हैं, और आप इस भ्रम में न रहें कि परमेश्वर उन्हें दंड न देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर न्यायी है और वह कभी भी पापी को उसके दंड दिए बिना नहीं छोड़ता है। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, गुप्त रूप में आप पाप क्यों ना कर रहे हो, आप ये सोचते होंगे कि आप बच जाएंगे, आपको किसी ने नहीं देखा है। निश्चय जानिए पत्रस कहता है कि परमेश्वर उन्हें दंड देगा। 2:15 में लिखा है वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बौर के पुत्र विलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। मेरे प्रियो, नए नियम के अंतिम पुस्तकों में विलाम का नाम 3 आया है। 2 में यह विलाम की रीति है, यहूदा में यह विलाम की भूल है, प्रकाशित वाक्य में यह विलाम की शिक्षा है। इन तीनों में अंतर है। विलाम का मार्ग क्या है? अधर्म की मजदूरी को प्रिय जानना। विलाम जानता था कि उसे इसराइल को श्राप नहीं देना है, श्रापित नहीं करना है, परंतु वह घूस की बड़ी राशि लेकर लालच में आ गया, और इसका अर्थ यह है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए उसने धर्म का काम करना आरंभ कर दिया। आज हम में से कई लोग भी ऐसा ही हैं। अपने स्वार्थ के लिए वे घूस लेकर परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाते हैं। उन्हें पता नहीं है कि परमेश्वर एक दिन उनके पापों का लेखा उनसे लेगा और उन्हें दंड देगा। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया है, यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। पत्रस कहता है कि विलाम अधीर होकर जा रहा था और उसकी गधी ने उससे शिकायत की। किसी ने कहा है कि उस युग में गधे का बोलना एक चमत्कार था और आज के युग में गधे का चुप रहना चमत्कार है। विलाम की गधी ने उसे लालच करने के कारण झिड़का था। मेरे मित्रों, आप धर्म के ठग व्यापारी को उसके रहन सहन से पहचान सकते हैं। जैसा कि कहावत है, 100 दिन का चोर 1 दिन पकड़ा जाता है। मेरे एक मित्र ने मुझे कहते सुना कि श्रोता, रेडियो प्रचारकों के जीवन को देखें कि उनका घर कैसा है और वे कैसी कार में घूमते हैं। उसने एक दिन ऐसा ही किया और पाया कि एक रेडियो प्रचारक के घर के सामने 2 सबसे कीमती कार खड़ी थी और उसके घर के पीछे एक तरणताल था। उसने उस प्रचारक के विषय और भी कुछ सुना, अतः उसने निर्णय लिया कि वह गलत मनुष्य को सहयोग दे रहा था। विलाम का मार्ग अर्थात लालच एक झूठे शिक्षक की पहचान है और परमेश्वर उसे दंड अवश्य देगा। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसके 17 पद में आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। मेरे प्रियो, एक बार हमारे यहाँ सूखा पड़ा, वहाँ दिन के समय घने बादल छा जाते थे और बिजली चमकती थी, बादल गरजते भी थे परंतु पानी नहीं बरसता था। झूठे शिक्षक ऐसे ही होते हैं, वे अति आकर्षक बादल हैं, उनसे भाषण सुनना बड़ा अच्छा लगता है, उनके व्यक्तित्व को आप देखें, उनके व्यक्तित्व को देखना बड़ा सुहाना लगता है, परंतु वे सूखे कुएं हैं, अंधे कुएं हैं। उनके भाषण एवं व्यक्तित्व प्रभावशाली हैं, परंतु अंधे कुएं में और निर्जल बादलों में पानी कहाँ होता है। आज मनुष्य परमेश्वर के वचन का प्यासा है, परंतु उसे सच्चा वचन नहीं मिलता है। लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं और उन्हें सच्चे वचन की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको इस वचन की गंभीरता के द्वारा से यह जानना है कि वचन सत्य है, जो परमेश्वर का वचन है, जो जीवन से बातचीत करता है और जीवन को बदलता है, हमारी आत्मिक प्यास को बुझाता है। संसार की बातें मुझे और आपको तृप्त नहीं कर सकती, और यही कारण है कि पत्रस कहता है कि हमें उन झूठे शिक्षकों से बचना है, क्योंकि वे बोलते तो हैं लेकिन उनका व्यक्तित्व बिल्कुल भिन्न है। आज मुझे और आपको उस सच्चे महान परमेश्वर की ओर आना है, वचन को ग्रहण करना है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर आज मुझे और आपको एक सही निर्णय लेना है, ताकि हम अपने जीवन में उन महान आशीषों को ग्रहण कर सकें। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, अपने जख्मों को हम सी सकते हैं, अपने जख्मों को हम सी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, अपने जख्मों को हम सी सकते हैं, अपने जख्मों को हम सी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं,
जाएंगे कुछ ऐसा हम कर जाएंगे, घर तेरा हुसा, घर तेरा हुसा, क्या सोचना कल होगा क्या, लिखेगी ऐसी एक दास्ता, कदमों तले होगा आसमां, घर तेरा हुसा, घर तेरा हुसा, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, अपने जख्मों को हम सी सकते हैं, अपने जख्मों को हम सी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम भी है फूल इस चमन के, दुनिया को ये समझाएंगे, सारा जहां महकाएंगे, घर तेरा हुसा, घर तेरा हुसा, दिल से यू दिल मिलते रहे, अरमा सभी के खिलते रहे, तो जिंदगी जन्नत बने घर तेरा हुसा, घर तेरा हुसा।